के फलां जन्नत में चला गया, जो मैंने बीच में हदीस सुनाई है ना आपको, उस पर ही आपने कहा होगा, तो समझिएगा बहुत बड़ी बात है ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मम माता फ़कद क़ामत क़यामत हो, जो शख्स मर जाता है ना उसकी क़यामत शुरू हो जाती है, जन्नती या जहन्नमी उसका होना पहले से पता लग चुका होता है। ये ऐसे ही है जैसे आपके बच्चे ने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, फिर 3 महीने इंतज़ार किया, फिर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ना, अनाउंस हुआ कितने नंबर लिए, लेकिन जिस वक्त पेपर में लिखा आया था पता तो लग गया कि उसी वक्त क्या है। अल्लाह के पास पहले से चीज़ें होती हैं, ठीक है, बंदे को 3 माह बाद पता चलती है। हमारे पास ये जो ऐसी हदीसें हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी, तो वो ऐसे ही था कि वही के जरिए अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया। आज मैं और आप नहीं कह सकते, लेकिन किसी नबी के पास ये हक मौजूद था कि अल्लाह ख्वाब के जरिए या वही के जरिए बता देता था कि फलां जन्नत में है फलां इधर है। उम्मीद है कि बात समझ आ गई है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप थके हुए तो नहीं है? आप कहते ना आज हमने एक्स्ट्रा आधा घंटा देना है। जी 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 बिल्कुल दे सकते हैं, हर एक को दे सकते हैं। देखिए हदीस में आता है कि गरीब रिश्तेदार को जब सदका देंगे ना तो दोहरा अजर होगा, क्योंकि एक तो सदके का अजर होगा, दूसरा सिला रहमी का अजर होगा। तो आप अपने रिश्तेदारों तक भी दे सकते हैं। और दूसरी बात देखिए गौर से समझिएगा, ये भी एक अपनी जगह पूरा मजमून है, और वो क्या है कि वक्त और ज़रूरत। आपके एक नेबर में कोई भूख से मर रहा है, खाना ही नहीं है उसके पास, और आप कहते नहीं मैंने तो रिश्तेदार को देना है और पाकिस्तान भेजना है, नहीं, अब वक्त और ज़रूरत का तकाजा है कि उस भूखे को खिलाएं, तो नीड ऑफ द आवर क्या है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर हम थोड़ी सी आंखें खोलें ना, तो आज के दौर में हमारे सदके का सबसे बेस्ट मसरफ क्या है, इल्म पर सदका करना। आज खाना भी बहुत है लोगों के पास, खाते भी बहुत हैं, कपड़ा भी बहुत है, जूते भी बहुत हैं, लोग नहीं खर्च करते। वल्ला ही मैंने देखा है 1 यूरो 1 पाउंड 1 डॉलर लोग एक कैसेट पे नहीं लगाते, एक सीडी पे नहीं लगाते, एक किताब नहीं खरीदते। करोड़पति लोग होंगे, दीन की चीज़ नहीं लेते, वैल्यू नहीं पता। आप उनको वो चीज़ लेकर देते हैं ना कि इनको मैं ये सीडी देती हूँ लेकर, ताकि ये उसको सुने और इनको शौक पैदा हो, वल्ला ही ये भी सदका है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सदका गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, आप दावा की नीयत से गैर मुस्लिम हैं उनको खिलाएं पिलाएं, आप उनको कोई इस्लामिक बुकलेट लेकर देते हैं, ऐसे ही उनके साथ राहो रस्म बढ़ाएं, इंशाल्लाह फायदा होगा। सदका बहुत वसी चीज़ है, जैसे आप अपने बच्चों को सारा दिन खिलाते हैं पिलाते हैं, घर आए मेहमानों को खिलाते हैं, आपके नेबर्स को भेज देते हैं, हम खुले हाथ से करते हैं ना, तो बस सदका भी इसी तरह वक्त और हालात के मुताबिक होता है। सुनने की अगर मुसीबत आती है तो ये जो ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका करते हैं पढ़ना चाहिए, कुरान में आता है कि कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। यूनुस अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने मछली के पेट से ये कलमा पढ़ने की वजह से निजात दी थी, और मोमिनों को भी देना है। मसला क्या है कि हम ये पढ़ते कैसे हैं, तस्बीह दाने 1.25 लाख, दही बल्ले पकोड़े समोसे, और घर वाली बेचारी खाने पकाती रहती हैं किचन में, और सहेलियाँ उससे भी बड़ी बेचारी जो 4-4 घंटे बैठ के आपके लिए पढ़ती हैं, ये ठीक नहीं है। तर्जुमा क्या है उसका, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। अब आपकी दोस्त पढ़ रही है, पढ़वा आप रही हैं उससे, क्योंकि बाद में खाना खिलाएंगी आप उसको, और आपकी दोस्त को कहना क्या चाहिए कि ए अल्लाह आपके सिवा कोई भी माबूद नहीं है और मेरी दोस्त ज़ालिम है। बात समझे, अब अगर आपकी दोस्त ने ये वजीफा शुरू कर दिया कि मेरी ए अल्लाह तू एक है इस तेरे सिवा कोई नहीं और मेरी दोस्त जालिम है जिस पे मुसीबत आई है, तो आप उसको दही भले खिलाएंगी, भाग जाएगी वो। आप खुद पढ़ें, बगैर गिने पढ़ें, बगैर बताए पढ़ें। यूनुस के पास पेट में कौन सी गुठलियां थी, कौन से तस्बीह के दाने थे, किसने गिना? और ये क्वेश्चन हमेशा मेरे जहन में रहता था, ये 1.25 लाख क्यों है, लाख क्यों नहीं? तो पता चल गया कुरान से सबूत मिल गया, कुरान में आता है कि यूनुस अलैहि सलाम जब मछली के पेट से निकल गए थे ना, उससे पहले कोई भी उन पर ईमान नहीं लाया था, ये उनकी एक आजमाइश थी, तो गुस्से में आ गए कि तुम लोगों ने ठीक ही नहीं होना, अल्लाह का भी हुक्म नहीं था लेकिन हिजरत कर ली, नबियों को इसकी इजाज़त नहीं होती। इस पे अल्लाह ने पकड़ की, उनको मछली के पेट में भेज दिया। जब वहां से निकले और दोबारा अल्लाह ने सेहत दी और वो कद्दू की एक बेल उगाई और उनको सेहत मिली, जब दोबारा अपनी कौम में गए ना, तो अल्लाह ने 1,25,000 लोगों के, जिक्र आता है कि 1,00,000 से कुछ ऊपर लोग उन पर फिर ईमान ले आए। इससे हम पाकिस्तानी इंडिया ने वजीफा जोड़ लिया। ये बातें हैं बस, अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। जी, कुर्बानी का गोश्त बिल्कुल दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं कुर्बानी का गोश्त, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबको दे सकते हैं। ठीक है जी, जी वैसे मैं आपको बताऊं, ये कुर्बानी के सवाल आपको अगली कुर्बानी आने तक भूल चुके होने हैं, तो मुझे उससे पहले एक दफा बुला लीजिएगा तो मैं फिर आपको वो इसे बता दूंगी। लेकिन यह है कि जो यकीनी तौर पे कुर्बानी करता है कहीं भी, उसको दिया जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है जी, देखिए इसको हम ऐसे सवाल बना लेते हैं कि जो बैगर्स हैं, फकीर हैं ना, रह जाते हैं, होमलेस हैं, उनको कह दें पैसा ना दें, उनको चीज़ दे दें। हम सब जब बाहर निकले ना, तो हमारे बैग में कोई सेब, केला, कोई फ्रूट, कोई बिस्किट का पैकेट, कोई रोटी, कोई बर्गर, ये होना चाहिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको खाना दे दें, क्योंकि फिर आपको श्योर हो जाएगा कि वो गलत नहीं इस्तेमाल करेंगे। नहीं, पैक्ड चीज़ दे दें ना उनको, कोई ऐसी चीज़ जो वो खाते हैं वो दे दीजिए। ठीक है इंशाल्लाह, तो फिर हम अगला टॉपिक शुरू कर लें, थक तो नहीं गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, इसको भी शुरू कर लेते हैं। मैं एक साथ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। मुसीबतों से कैसे निपटे? अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर किया, और वो क्या था कि मुसीबतों के आने से पहले क्या काम किए जाएं। फिर उसमें हमने 10 चीज़ें देखी, फिर हर चीज़ की मज़ीद डिटेल देखी। अगर मैं अब दोहराऊंगी तो आप फिर थक जाएंगे। अब हम इसका दूसरा बुनियादी हिस्सा शुरू कर रहे हैं, और वो क्या है कि मुसीबतें आ गईं। अब जब एक मुसीबत आ रही है फिर क्या करें, बात समझ रहे हैं? यानी तीसरा टॉपिक है, पहला सा टॉपिक क्या था, मुसीबतें क्यों आती हैं, असबाब। दूसरा पड़ा था मुसीबतों के आने से पहले 10 काम जो हम कर लेंगे, तो उसके बाद अल्लाह के हुक्म से हम उस चीज के मतलब आने से बच जाएंगे। वही बात है, प्रिकॉशन ले लें ताकि वो मुसीबत आए ही ना। अब जो हम पढ़ने लगे ना, पहले तो मैं आपको इसका खुलासा दे देती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा बुक के साथ भी देखते जाएंगे। और वो क्या है कि जब मुसीबत आ जाए फिर क्या किया जाए। इसके अंदर आप देखिए कि जब मुसीबत आती है ना, तो सच बोले मत मारी जाती है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं मेरी तो होश ही गुम गई, मुझे तो अकल ही नहीं आई, उस वक्त तो सूझा ही कुछ ना। तो मुसीबत आने के बाद ये जो कुछ अभी हम पढ़ने लगे हैं ना, ये वही कर सकेगा जो जहनी तौर पे मुसीबत के आने से पहले तैयार था। बात समझे? पिछली सीढ़ी पे अगर आप ना चढ़े होंगे ना, तो अगली सीढ़ी पे आप एकदम जंप नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ अगर हम इस बुक को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टॉपिक के अंदर मुसीबतों के आने के बाद जो हम काम कर सकते हैं ना, वो कितने हैं? 19 काम हैं। मैं बोलती हूँ एक एक करके, आप इसको नोट करना चाहें तो कर लें, कि हमें मुसीबतों के आने से पहले जो 19 काम करने हैं, 19, उसमें से सबसे पहली चीज़ मसाइब के हतमी तौर पर आने का एतकाद। यकीन रखे कि मुसीबत आएगी, पूरी भी कोशिश कर ले माएँ बच्चों की सेहत की, बच्चे फिर भी बीमार होते हैं। दूसरी बात, हर चीज़ के अल्लाह ताला की मलकियत होने और इन्हीं की तरफ लौटने का एतकाद। यानी जब मुसीबत आए तो सोचे कोई बात नहीं, हम सब अल्लाह के और हम अल्लाह की तरफ पलट जाएंगे। تیسرا یہ ایمان بنائیے کہ مصیبت صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے. اس میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ہم عموماً لوگوں کو وجہ بناتے ہیں, اس کی نظر لگ گئی, اس نے بد دعا دے دی, اس کی آنکھ پڑ گئی. نہیں, اللہ کے حکم سے آتی ہے. چوتھی چیز, تقدیر پر راضی رہیے. آ جو گئی ہے تو بھگتی ہے, پھر قضا اور قدر پر راضی رہیے. پانچویں چیز کیا ہے, بہت بڑی بات ہے اور بہت تھوڑے لوگ اس وقت سوچ پاتے ہیں, اور وہ کیا, مصیبت میں خیر کو ڈھونڈیے. آسان تک رہو شعین بہوا خیر الکم. شاید کسی چیز کو تم برا سمجھو لیکن وہ تمہارے حق میں اچھی ہو. پھر چھٹی چیز کیا ہے, مصیبتوں اور مشکلات میں چھپے ہوئے فائدوں کو نظر میں رکھیے. جیسے کریلے کڑوے ہوتے ہیں نا, لیکن اس کے اندر خیر چھپی ہوئی ہے نا, اسی طرح سے مصیبتوں کے اندر بہت ساری خیر ہوتی ہے. سیلاب اور طوفان زلزلے آتے ہیں تو بہت سارے معدنیات زمین سے نکل کے باہر آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے مصیبتوں کے اجر اور ثواب کو آنکھوں کے سامنے رکھیے. ایمان بنائیے کہ اللہ میرا اجر ضائع نہیں کرے گا. یہ جو تھوڑ دلے ہو جاتے ہیں اور اس کو سنا اور اس کو بتا اور پتہ نہیں, مجھے تو لگتا ہے ہم ہر حال میں چھچور پنے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ. تحمل رکھیے, آئیے ٹل جائے گی, اللہ کے حکم سے آئیے چلی جائے گی. پھر اسی طرح صبر کے ذریعے سے مدد مانگے. جب مصیبت آ گئی پھر صبر کیجیے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ نزلہ یا زکام دوائی نہ کھائیں تو 7 دن میں ٹھیک ہوتا ہے, اور دوا کھائیں تو 1 ہفتے میں ٹھیک ہوتا ہے. کیا سمجھ آئی؟ 1 ہفتہ لگنا ہی لگنا تھا. تو صبر کیجیے, پھر ذرا آرام سے بیٹھیں. یہ جو جلبلا پن ہوتا ہے نا, ہائپرنس, یہ بہت خطرناک ہے. اور یاد رکھے, کسی کے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے نا مشکل حالات میں, اس کا رسپانس دیکھ لے. ایک تو مشکل آتی ہے, دوسرا ہم وہ لوگ کہتے ہیں تم تو آرام سے بیٹھو. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ یہ جو تم تڑپ تڑپ رہے ہو. بہت کم لوگوں کو اللہ صبر, حوصلہ اور پوزیٹیویٹی دیتا ہے مشکل حالات میں. بہرحال پھر نماز کے ذریعے مدد مانگنا, نفل پڑھیے, اللہ سے دعا کیجئے. پھر استغفار سے چمٹے رہنا, مشکل آ جائے پھر بھی استغفار کرنے سے ہی فائدہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں, یعنی جب مصیبت آئے تو چھوڑیے گناہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مصیبت کو ٹال دے. پھر اسی طرح سے دعا کریں, جیسے مصیبتوں کے آنے سے پہلے دعا فائدہ دیتی ہے, اسی طرح مصیبتوں کے آنے کے بعد بھی دعائیں ہی فائدہ دیتی ہیں. پھر اس کے بعد غموں کو دور کرنے والی ثابت شدہ دعاؤں کا اہتمام کرنا. یعنی غم آ گیا نا, پہلے کیا تھے, اذکار تھے, مصیبتیں نہ آئیں. آپ پڑھیں گے اگر وہ سارے اذکار, تو اس میں پریکاشنز ہی یہ ہیں کہ اللہ ہم پہ یہ مصیبت نہ آئے. اب اس میں انشاءاللہ ہم ایسی دعائیں سیکھیں گے کہ آ گئی یہ مصیبت تو پھر غم دکھ کیسے دور ہو. پھر اسی طرح سے ذکر الہی کرتے رہنا, اللہ کو یاد کیجئے, تکلیف انشاءاللہ کم لگے گی. 15ویں چیز کیا ہے, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں. کوئی بات نہیں, ایک مصیبت آئی ہے نا, 10 نعمتیں بھی ہیں نا میرے پاس, تو جب نعمتوں پہ نظر ہوگی تو انشاءاللہ مصیبت نہیں لگے گی. پھر اسی طرح مصیبتوں کا سب پر آنے کو پیش نظر رکھیں کہ سب پہ آتی ہیں, تو میں کوئی خاص کوئی وی آئی پی پرسن تو نہیں ہوں کہ میرے اوپر تکلیف نہیں آئے گی. تو جب آ گئی ہے تو پھر صبر کیجئے. پھر اسی طرح اپنے سے بڑی اور سنگین ابتلاؤں میں مبتلا لوگوں کو دیکھیں, یعنی ان لوگوں کو دیکھیے جو آپ سے بھی بڑی مشکل میں. آپ کے سر میں درد ہے, لوگ کینسر سے مر رہے ہیں, ہے نا, تکلیف کس کی بڑی ہے. بخار ہوا ہے, شکر ہے اللہ کا, دل کا دورہ تو نہیں پڑ گیا. تو آپ دیکھیے کہ اس سے ایک دم بندہ سٹیبل ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ یہ ہم یہ ٹاپک انجوائے کر سکتے ہیں. اس کے بعد تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصیبتوں کو آپ انجوائے کریں گے. امیوز از فائن, اللہ کا تحفہ. اور جو خود پیارا ہوتا ہے نا, اس کی دیوی چیز نہ بھی اچھی لگے تو پیاری لگتی ہے. اللہ سے محبت آپ کو ملے گی انشاءاللہ. پھر اسی طرح سے ہر تنگی کے ساتھ عظیم آسانی کے ہونے کی سنت الہی کو نہ بھولے, یعنی فائن نہ مال اسری یسرا, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اور 19ویں بات جو سب سے اہم ہے, مایوسی اور نا امیدی سے بچیے. تو یہ 19 کام ہیں جو کبھی ہم پہ مصیبتیں آ جائیں تو پھر ہمیں کرنے ہیں. لیکن آپ کو میں ابھی سے ہی بتا دوں کہ یہ کام کرنے کے لیے مائنڈ سیٹنگ پہلے سے ہوگی. مثلا آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے ماں نے بچے کو انجیکشن لگوانا ہوتا ہے, کیا کرتی ہے, پہلے تو اس کو گود میں لیتی ہے, ایسے چپکاتی ہے, फिर उसका मुंह दूसरी तरफ कर देगी कि कहीं वो इधर उधर देख ना ले, और जब पूरे सीने से चिपके, और उसको पता है कि जब सुई लगनी है तो ये चीखेगा, हाथ भी उसके बांधे होते हैं पीछे, प्यार से मोहब्बत में लिया होता है। फिर एकदम जब उसको सुई लगती है तो माँ सीने से लगा लेती है। याद रखिए, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है, लेकिन बात समझ आती है, जो मुसीबत दे उसी के दामन में पना ले ले। माँ ही टीका लगवाती है और माँ ही के दामन में बच्चा पना लेता है। आपके मेरे लिए भी यही है, अपने आप को अपने रब के साथ इस तरीके से जोड़ लीजिए कि जिसके बाद आप अपने आप को अल्लाह का कुर्ब महसूस करवाएं। आपको अंबिया कराम कैसे वाकयात और ऐसी बातें मिलेंगी कि वो कहते थे, जैसे हजरत अय्यूब के बारे में आता है कि बहुत अमीर थे, औलाद भी थी, दौलत भी थी, सब कुछ था, अल्लाह की तरफ से एक ऐसी आजमाइश आ गई कि एक एक करके सब चला गया। तो कहा करते थे, कौल है उनकी तरफ से मारूफ कि अल्लाह जब नेमतों में पलता था ना, तब भी तूने बहुत कुछ दिया था। तुझे पता है कि मेरा नरम गरम बिस्तर रहता था जिसको छोड़कर तेरे पास आता था, अब तो तूने मेरे और अपने बीच की सारी रुकावटें दूर कर दी, अब तो मजा ही बड़ा आता है तेरे से बात करके। समझ आ रही है? नहीं समझ आई? तकलीफों में अल्लाह से ताल्लुक जुड़ जाता है। कहते हैं कि सुबह शाम सलाम पेश होता था अल्लाह को कि अल्लाह की तरफ से तकलीफ के वक्त में उनको, तो वो जो हाल पूछ लेता था ना अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए, ये चीज इतनी लज्जत दे देती थी कि बाकी चीजों के अंदर फिर तवज्जो ही नहीं जाती थी। तो अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक दे, हम इसको थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। बुक का पेज अगर आप देखें तो 203 से पहली बात शुरू होगी। जी, मुसीबतों के आने के बाद के काम में पहली चीज क्या है कि मुसीबतों के हतमी तौर पर आने का इतेकाद रखना। सूरत बकरा आयत 155 और 156 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यि मिनल खौफि वल जूई व नक्स मिनल अमवाली वलनफुसि वस्समराति वबशिरिस साबिरीन अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यकीनन हम तुम्हें दुश्मन के डर, भूख, मालों, जानों और फलों की कमी में से किसी न किसी चीज से जरूर आजमाएंगे, और इन सब्र करने वालों को बशारत दे दीजिए जिन्हें जब कोई मुसीबत लाहक होती है तो वो कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह की मलकियत हैं और हम उन्हीं की तरफ लौटने वाले हैं। पीछे शुरू में भी आपने ये आयत पढ़ी थी, क्या पता चला? मान लीजिए कि ये होगा, मैं इसको एक कोड वर्ड दे देती हूँ आपके लिए, घर से निकले ड्राइविंग करते हुए, मान लीजिए कि रोड पे और गाड़ियां होंगी, कुछ स्कूटर वाले होंगे, कुछ साइकिल वाले होंगे, कुछ पैदल तो चलेंगे, मेरा काम क्या है? केयरफुल ड्राइविंग करनी है, स्पीड कंट्रोल रखनी है, स्टेयरिंग पे नजर रखनी है, फ्रंट पे देखिए, सारा प्रोटोकॉल पूरा करते हुए अपनी गाड़ी को बचते बचाते वहां से निकाल लें। बस ये खुलासा है। आप कहते हैं कोई मुसीबत ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई बीमारी ना आए, तो पहली बात है कि हमें अपना बंदा होना कैसे दिखेगा, सोचिए। दूसरी बात है कि आप बाहर निकली, शहर में एक गाड़ी नहीं है, तो आपके बाहर निकलने का अक्सर मकसद ही फौत हो जाएगा, क्योंकि दुकानें भी बंद होंगी, किसी को मिलने गए हैं तो वो भी नहीं होगा। तो बस इस बात का यकीन रखें, आएगी, पहले से सोच लें। जैसे आप देखिए कि पानी खोलें तो जिस्म गीला होगा ना, हाथ पानी में रखे तो हाथ तो गीले होने ही हैं। पहली चीज दिल को यकीन दिलाएं ये आनी है। मसला कब बिगड़ता है? जब हम कहते हैं ये क्यों आ गई, मुझ पे क्यों आई, भाई आनी थी। 2 दिन नहाएंगे नहीं तो स्मेल आएगी, सुबह उठ के ब्रश नहीं करेंगे तो मुझसे स्मेल आएगी, एक्सेप्टेड है ना, कुछ खाएंगे तो वॉशरूम में जाएंगे, बस मान लीजिए ये तो होगा। तो आप देखेंगे कि इससे वो जो एकदम झटका लगने वाली कैफियत है ना, वो दूर हो जाती है। दूसरी चीज, हर चीज अल्लाह की मलकियत है और उसी की तरफ लौटने का एतकाद है। इससे तो बहुत बंदगी आती है। मैं हूं क्या? ये अकीदा किसी तकलीफ में मैं अल्लाह की हूं, अल्लाह की नजर में हूं, अल्लाह ने मेरे ऊपर जो भी तकलीफ डाली है मुझे उस पर क्या कहना है? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊ। अच्छा, ये जुमला सुन के हमारे जहन में क्या आता है? किसी की मौत। हालांकि आपको पता आपको पता है कि ये जुमला हर वक्त याद रखने का है। कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसको ये याद आए ना, और मैं इसको अक्सर लोगों को वाहिद के सीगे में पढ़ाती हूँ, हम कैसे पढ़ते? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। आप इसको वाहिद में या अपने लिए पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? इन्नी लिल्ला। कोड वर्ड रख लें आज का, इन्नी लिल्ला, मैं अल्लाह की हूँ। व इन्नी इलैही राजिऊन, और मैं इसी की तरफ लौट कर जाऊंगी। तो ये जुमला हर वक्त अपनी जुबान पे रखें कि इन्नी लिल्ला, मैं अल्लाह की हूँ। और कुरान में यह आयत मौजूद है, लिल्लाहि मा फिस समावाती व मा फिल अर्द। सब कुछ अल्लाह का है और उसी की तरफ उसने लौटना है। तो जब अल्लाह की चीज है तो उसकी तरफ लौट गई तो क्या बुरी बात है? हत्ता कि आपको पता है कि मौत, किसी की मौत हमारे होश गुम कर देती है। आप बोलिए, वो अल्लाह का था, अल्लाह की तरफ चला गया। एक बड़ा खूबसूरत वाक्या है, इसमें भी नोट किया हुआ है, आप भी बाद में पढ़िएगा। उम्मे सलमा बड़ी प्यारी सहाबिया थी अल्लाह के नबी की। अल्लाह ताला ने उनको एक अजीब सा सुकून दिया था। उनके शौहर का नाम था अबू तलहा। सुबह जब काम पे गए, उम्मे सलमा पहले बोल दिया ना, उम्मे सुलैम सहाबिया थी, शौहर थे अबू तलहा, बच्चा बीमार था। खैर, शौहर काम पे चले गए, अल्लाह को हुक्म देके पीछे से बच्चा फौत हो गया। उसको नहलाया धोलाया, कफना कर कमरे में रख दिया। शाम को शौहर थके हारे आए, आके पूछते हैं बच्चे का क्या हाल है? कहने लगी पहले से बहुत अच्छा है, क्योंकि मोमिन मौत के बाद जिंदगी से अच्छा ही होता है। कहा अच्छा ठीक है। शौहर ने खाना खाया, यानी अब उनको पता था कि थके हुए आए हैं, खिलाया पिलाया, हत्ता कि उनकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। और जब सुबह उठे तो कहा एक बात तो बताइए, अगर किसी ने आपके पास कोई अमानत रखाई हो और वापस आ जाए लेने के लिए तो क्या करेंगे? कहा खुशी खुशी दूंगा, जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो कहा कि बस अपने बेटे पे सब्र कर लीजिए, अल्लाह ने जो अमानत रखी थी वो वापस ले ली। क्या हुआ? बच्चा फौत हो गया। किधर है वो? अंदर है। घबरा गए, ए औरत तूने किया क्या मेरे साथ? मैं तो अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा था और तूने बताया ही नहीं। अल्लाह के नबी के पास गए और फजर के बाद की महफिल में बातें होती थी, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने वही के जरिए से बता दिया। कहा कि ए अबू तलहा, आज की रात अल्लाह ने तेरे लिए खैर रख दी, अल्लाह अब तुझे एक और बेटा देगा। قالوا ان لله و ان اليه راجعون। ये बात सुनने में जितनी खूबसूरत है ना, अल्लाह किसी मां को इस आजमाइश में ना डाले। और मैं सोचती हूँ कि उन्होंने इस हद तक छुपाया हुआ कि शौहर को शहर में खबर ही नहीं मिली। हम तो एक टैक्स करते सारे फेसबुक पे मुसीबत पड़ती, आप तो फोन उठाते हुए डर लगता, सांस कोई बाद में तोड़ता है सारी दुनिया में खबर पहले फैलती है। सब्र नहीं है आज हमारे अंदर, एंग्जाइटी है, हाइपरिज्म है। उसको फोन कर, उसको बता, अब ये हो गया नहीं, अब ये हो गया। ये सेल फोन का तो गलत इस्तेमाल किया भी हमने, ये मिनट मिनट की खबर है। बेटी ससुराल में निभती क्यों नहीं है उसकी? उसने एक एक मिनट की रिपोर्ट माँ को देनी है। अब ये कह दिया, अब ये हो गया, अब वो कर लू, नहीं अब सब ठीक है, अब माँ परेशान है और आप ठीक हो गए। याद रखिए, अपने अंदर रखिए, अगर आपने अपनी अपना ईमान बढ़ाना है ना तो मुश्किलों में चुप हो जाए, मुहासवा करें, सब्र करें। तो उम्मे सुलैम की ये बात मौजूद है हमारे लिए इस बात की दलील कि ये सब्र सिर्फ वही कर सकता है जिसको यकीन है कि हम अल्लाह के, वरना इतना सब्र एक माँ तो नहीं कर सकती। मैं सोचती चले उम्मे सुलैम ने नहीं बताया तो शहर में और किसी तक भी नहीं खबर गई। जो बात आप चाहते हैं ना दूसरों को ना पता चले, वो मुझसे भी ना निकाले। सुबह जब शौहर को पता चला तो बाकियों को भी पता चल गया होगा। फिर तीसरा काम देखिए कि मुसीबत के सिर्फ अल्लाह के हुक्म से आने का इतकाद रखिए। यह बड़ी खूबसूरत बात है, सच्ची बताऊं। अगर आपको अल्लाह से प्यार है ना, तो अल्लाह के हर फैसले से प्यार होगा, अल्लाह के हर मामले से प्यार होगा। आप अपने दिल को इस बात का यकीन दिला लें, सारी दुनिया एक किनारे पे खड़ी हो जाए और वो मुझे खैर देना चाहे, लेकिन अल्लाह नहीं चाहता कि मिले, तो नहीं मिलेगी। और इसका अपोजिट, सारी दुनिया आपको आग में डालना भी चाहे ना, और अल्लाह बचाना चाहे, तो नहीं लोग डाल सकते। इसका मामला तो हज़रत इब्राहिम के साथ हो गया, कुल ना या ना रुखूनी बर्दम व सलाम अला इब्राहिम। इससे भी कोई बड़ी मुसीबत किसी पे आ सकती है दुनिया में कि लोग उसको खड़ा करके आग में डाल दें, लेकिन इब्राहिम की आग किसने बजाई? इस्माइल को छुरी में से, छुरी के नीचे से किसने बचाया? यूनस को मछली के पेट से किसने निकाला? बिछड़े हुए बेटे को याकूब से किसने मिलाया? तो मान लीजिए कि जो मेरे ऊपर तकदीर का, जो मेरे ऊपर जो बात आई, ये भी अल्लाह ही बुरी करेगा। और किसी की ऐसी ठेठ सी बात है कि खुदा किसको कहते हैं? कहते हैं जिसकी ना ठीक भी ठीक लगे उसको खुदा कहते हैं। अल्लाह की कोई चीज़ ना ठीक होती नहीं है वैसे, याद रखिए। लेकिन ज़ाहिर हमें अल्लाह के कुछ फैसले अच्छे नहीं लगते। मेरे साथ क्यों हुआ, अभी क्यों हुआ, मैंने अल्लाह का क्या बिगाड़ा? अस्तग़फ़ार कीजिए, मत बोलिए। ये कहिए कि मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन अल्लाह के इस फैसले में खैर होगी। फिर चौथी चीज़, जब तकलीफ आ जाए तो कज़ा और कदर पे राजी रहिए। मैं अक्सर सोचती हूँ, बल्कि जब लोगों के मामलात मेरे सामने होते हैं और क्लोज सर्किट में किसी भी मामले को देखो ना, तो मैं ये सोचती हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा ये बात, क्योंकि ये फी ज़माना बहुत कॉमन है। हम आई हुई तकलीफ या मुसीबत पे जो शोर मचाते हैं ना, असल में हमारे तकदीर बिल कदर की कमज़ोरी होती है, तकदीर को नहीं मानते। और मैंने इस मौजू पे बहुत बात की है, मुझे मेरा फेवरेट टॉपिक है ये अल्हम्दुलिल्लाह। एक लेक्चर भी है तकदीर बा मुकाबला तदबीर, लंदन में हुआ था, इसी तरह इस पे बात की हुई और मज़ीद भी करनी है इंशाल्लाह जहाँ मौका मिला। लेकिन तकदीर का मुनकर या तकदीर के फैसलों पे जो राजी नहीं है ना, उसका नसीब फिर यही कुछ है जो लोग करते हैं मुसीबतों के वक्त में। उसने किया, उनके कहने पर रिश्ता कर दिया, उन्होंने मुझे रिश्ता दिखा दिया, उन्होंने मुझे फंसा दिया, उन्होंने गलत मामला कर दिया, मेरे नसीब में यही रह गया था, यही औरत थी। मैं कहती हूँ अपने आप को रिलैक्स करें, टेक अ डीप ब्रेथ, यही था नसीब में, करो जो करना, यही औरत आपकी सास बननी थी। रज़ीतु बिल्लाही रब्बन, आप पढ़ेंगे सुबह शाम के अज़कार में 3 दफ़ा रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मोहम्मद नबीजन। ये सिर्फ चंद कलमात हैं, 3 दफ़ा सुबह पढ़ा करें, 3 दफ़ा शाम को, अल्लाह आपको तकदीर से राज़ी कर देगा। मैं राज़ी अपने रब पे, है किसी की जरूरत को रोक सके? आती को कोई रोक सके या ना आए तो रब किसी को दे दे, तो मान लीजिए कि ये मेरी तकदीर में था, यही शौहर मिलना था, करो जो करना, यही बच्चे थे आपके नसीब में, नहीं दी अल्लाह ने बेटी, नहीं थी मिलनी, नहीं दिया अल्लाह ने बेटा, नहीं देना था। अल्लाह ने कुछ नहीं दिया तो भी ठीक है, सब दे के सब ले लिया तो भी ठीक है, क्योंकि बिलकदरी खैरी ही व शर्री ही बिन अल्लाह। कितना सुकून मिलता है, देखिए एक है किसी बात। अच्छा हम क्या करते हैं, ये बहुत वीक पॉइंट है आज हम मुसलमानों को वल्लाही, कि हम एक्सेप्ट नहीं करते ब्लेमिंग। इन्होंने कहा, इन्होंने कहा, घर में भी कोई नुकसान हो ना तो शौहर बीवी को जिम्मेदार ठहराएगा, बीवी शौहर को, और कुछ नहीं तो हम सारे मिलके बच्चों को जिम्मेदार करते हैं। नहीं मानिए, बहुत बहादुर लोग होते हैं जो अपनी तकदीर के फैसले मानते हैं। होना था आपने भाई की बेटी से शादी की, नहीं बनी। आपने अपनी बहन का बेटा ले लिया, उससे शादी अपनी बेटी की कर दी, नहीं नहीं भी, तो छोड़ दीजिए, और भी बड़े रास्ते खुले हैं आगे। और मैंने देखा है कि लोग रोग बना लेते हैं जिंदगी के एक गलत फैसले को या एक मिसहैप को। आगे चलिए जिंदगी के सफर में, आगे देखिए, अब गाड़ी चलाते हुए आप बैक मिरर में ही देखते जा रहे हैं जो इतना छोटा सा है, तो आप मुझे बताइए कि आप कैसे बचेंगे। तो जिंदगी का सफर तकदीर बिल अल्लाह की तकदीर पर राजी रह के गुजारिए। जैसे आप इसको इस तरह समझ के, मैं इसको क्लोज करती हूँ, कि आपका बच्चा आपसे हर बात की हिकमत पूछे तो आप उसको सेटिस्फाइड कर पाएंगे? आप बच्चों को बता दें कि अब्बू के अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो फिर जरा देखिए कि आपके बच्चों की फरमाइशें क्या होती हैं। लेकिन आपको पता होता है कि अगर बाप के पास पैसे इतने हैं लेकिन बच्चे का पॉकेट मनी बस इतना ही है, और बच्चे से पूछ के जरा घर में खाना पकाए तो देखिए रोज क्या पके, दाल तो कभी ना पके, सब्जी तो कभी ना पके। तो जब बच्चों को आपकी हर बात नहीं समझ आती, हर बात की रीजन मांगे, हर चीज की लॉजिक मांगे, तो मुझे बताइए कि आप भी चिढ़ जाएं, तो ये कह दिया करें कि अल्लाह मेरी अक्ल छोटी तू बड़ा, मैं राजी हूं। कभी माँ अपने बच्चे के लिए गलत फैसला करती, तो क्या रब अपने बंदे के लिए गलत फैसला करेगा? तो पांचवा पॉइंट नोट कर लें कि मुसीबत में खैर के होने की उम्मीद रखें। आसान तक रहो शैयन बहुआ खैरुल्लकुम, सूरत बकरा आयत 216 है, मेरी फेवरेट आयत है ये। जिंदगी गुजारना आ जाता है जब आपको यह आयत समझ आ जाती है। इंसान का नफ्स हमेशा जिंदगी में ये चाहता है कि जो उसको जाहिर अच्छा लग रहा है वो उसको मिल जाए। हालांकि आप देखिए, आप बच्चे को चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन क्या चॉकलेट उसके लिए फायदेमंद है? दूध अक्सर बच्चों को पसंद नहीं होता, लेकिन दूध पीना उनके फायदे की चीज है। हर बच्चा क्या चाहता है? मादर बिदर आजाद हो जाऊं, जो मेरा दिल करे मैं करूं। लेकिन माँ बाप की डांट और वो आमले का अचार जरा बाद में ही समझ आता है। तो जिंदगी का ये असूल बना लें, और वो क्या है कि शर में खैर होगी। मैंने वो आपको पीछे भी कल भी वाक्य कहीं अच्छू के दो तीन जगह पे बातचीत चल रही है ना, तो भूल जाता है कि कहाँ बताया कि हर बात में ही खैर है। एक बादशाह था, एक उसका वजीर था, हर बात में कहता था अच्छा ही हुआ, जो हुआ खूब हुआ। सुना था इधर, सुना था आपको? तो उंगली कट गई, खैर है, खैर ही खैर थी। कुरान में इस मौजू को अगर आपने पढ़ना है ना, तो सूरत कहफ के वो तीन वाक्यात पढ़ लीजिए, जो मूसा और जुलकर ने इनका किस्सा है। बेटे बच्चे का कत्ल खैर थी, क्योंकि उस बच्चे ने बड़े होके माँ बाप की बदनामी का जरिया बनना था। कश्ती का बिगाड़ना खैर थी, क्योंकि अगर सही होती तो दूसरी तरफ का जालिम बादशाह उसको ले जाता। और तीसरी बात आप समझते हैं कि अगर वो दीवार को ठीक ना करते तो यतीमों का माल जाया हो जाना था। तो जिंदगी में खुशियां लाने वाला ये असूल है कि हम अपने आप को अल्लाह के फैसलों पर राजी कर लें। पांच ही काफ़ी है, टाइम पूरा हो गया, क्योंकि मुझे इतना पता है कि हमने आज 12:30 पे छोड़ना है। अगर इन पांच बातों पे गौर करते हुए इंशाल्लाह बाकी अगली बातें हम कल पढ़ेंगे। कल ज़्यादा हमारे पास टाइम कंसाइज्ड है, याद रखिए कल जुम्मा है, मस्जिद में नमाज के लिए हमें 11:45 पे हॉल खाली करना होगा। तो कल हम दुआओं का सेशन मुख्तसर करेंगे और सेशन हमारा शुरू जल्दी हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, खैर से फरमाए। ये इनका सवाल है कि औरत क्या अपने मखसूस अयाम में मस्जिद में आ सकती है? तो आप देखिए कि मस्जिद में आना और चीज़ है और मस्जिद में ठहरना और चीज़ है। सूरह निसा में आयत आती है इल्ला आबिर सबील, आबिर कहते हैं गुजरना। अगर सिर्फ गुजरना पड़े, कोई ज़रूरत की चीज़ है तो लानी है। रिवायत में आता है कि हज़रत आयशा को अल्लाह के नबी ने एक मौके पे कहा जाए नमाज लाने को या मस्जिद से गुजरना, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हाइजा हूँ। तो आपने फरमाया कि हैज़ तेरे हाथ में नहीं है। इसी तरह एक और बुज़ुर्ग भी थे, तो उनकी लॉन्डी फीते से पकड़ कर जाए नमाज उनके लिए ले आती थी। तो आम हॉल जिसमें पाँच वक्त नमाज होती है उसमें बैठना नहीं चाहिए। किसी ज़रूरत के तहत गुजरना है, कोई चीज़ लेनी देनी है, तो उसकी रुख्सत मौजूद है। अब आप कहें कि अगर हमें कोई दर्स है, कोई प्रोग्राम है, वहाँ जाना है और वहाँ मस्जिद का प्रेइंग रूम है, जैसे मिसाल ले लेते हैं कि अगर इस वक्त भी हम इस हॉल की बात करें, ये शीशे के बाहर आप जहाँ भी बैठ सकती हैं। मस्जिदों के दो तीन हिस्से होते हैं, एक होता है प्रेइंग रूम, जैसे ये रूम मेरा ख्याल है कि मर्दों का प्रेइंग रूम है ना, ऐसी सिस्टर बस वहाँ सब कुछ खुला है, आवाज़ तो सारी मस्जिद में मेरा हाल आ रही है, तो आप ये डोर छोड़ के वहाँ बैठ सकते हैं यदि शुरू के हिस्से में। या अगर कोई चाइल्ड केयर रूम है जिसमें बच्चों की माएँ बैठती हैं, या डाइनिंग रूम है, अमेरिका में तो ऐसे ही होता है, पूरी पूरी मस्जिद में घर होते हैं बड़े बड़े, तो किसी भी रूम में बैठे आवाज़ तो आ रही होती है, तो इंशाल्लाह ताला जो मकसद है वो तो पूरा हो जाता है। ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर। मेरा ख्याल है कि हम ऐसू नैज मस्जिद खाली करें ताकि ब्रदर्स को हमसे शिकवा ना हो। जी जी आपका सवाल यह है कि पीरियड्स के बाद का जो ब्लड होता है, सिस्टर इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है, एक बुक हम पढ़ते हैं तहारत के मसाइल, तो उसमें बड़ी डिटेल से ये है। अगर आप अपना फ़ोन नंबर दें तो मैं इनको साइमा को बोलूँगी कि वो आपको उसका लिंक दे दें, तो डिटेल से करें। वो इस्तखाज़ा हो जाता है आज के दौर में, जिस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ना, तो आप अपना फ़ोन नंबर इनको दे दें, आपको उस बुक का लिंक देते हैं, या आपके पास अगर आप ऐप है फ़ोन में तो उसमें भी दिखा सकती हूँ, तो आप इसको डिटेल से सुने, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
ये बाद में बता दीजिएगा अगर अभी टाइम मिले तो।
जी ठीक है, ज़रूर।
एक छोटा सा था वैसे ही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कहते।
अच्छा, ताहिरा आई नहीं है अगर इधर हॉल में, तो ज़रा उनको भेजिए, मेरे पास भेजिएगा।